ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद्भागवतम् षष्ठम स्कंद अध्याय 14 श्लोक संख्या 6 अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा अभी तक लिख रहा है हाँ हरे कृष्ण वृत्र तु सह कथम पापः सर्व लोक उपतापन इत्यम इत्थम दृढ़मतिः कृष्णे आसीत् संग्रामे उल्बणे वृत्रस्तु सह कथं पापः सर्वलोकोपतापनः इत्थं धृढमति कृष्ण आसीत् संग्राम उल्बणे वृत्रस्तु सह कथं पापः सर्वलोकोपतापनः इत्थं धृढमति कृष्ण आसीत् संग्राम उल्बणे अनुवाद वृत्रासुर युद्ध की ज्वाला में स्थित था और अन्यों को कष्ट पूछने के लिए कुख्यात पापी असुर था तो भी ऐसा असुर किस प्रकार इतना बड़ा कृष्ण भक्त हो सका तात्पर्य यह बतलाया जा चुका है कि किस प्रकार लाखों तथा करोड़ों व्यक्तियों में से कोई एक शुद्ध भक्त अर्थात नारायण पारायण होता है अतः परीक्षित महाराज को आश्चर्य हो रहा था कि वह वित्रासुर जो अन्यों को कष्ट पहुँचाने के लिए कुख्यात था युद्ध भूमि में रहते हुए भी ऐसे भक्तों में से एक था वृत्रासुर की उन्नति का क्या कारण था येषां त्वन्तकथं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि ऐसे लोग मुझे दृढ़ से भक्ति कहते हैं जो यही जीवन के और पूर्वजन्मों के समस्त पापों का प्रभाव से मुक्त होते हैं और जो सभी प्रकार का द्विधा और द्वैत विचार से विमुक्त है। द्वैत विचार इस प्रसंग में का अर्थ है, जैसे बार बार गीता में भगवान कहते हैं कि आध्यात्मिक पथ पर उन्नत व्यक्तियों की समता होती है, संभव बुद्धि। जैसे विनय ब्राह्मण और विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण गविहस्त्री शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शन समदर्शी, जो समदर्शी है सबको एक जैसे दिखते। विद्या और विनय संपन्न ब्राह्मण गवि हस्तिनी हस्ती हस्तिनी कुत्ता कुत्ते के खाने वाले सबको एक जैसे देखते हैं। किस प्रकार? क्योंकि देखते कि सबका मूल स्वभाव है आत्मा कृष्णदास। और गीता में भगवान कृष्ण इस प्रकार बहुत कहते हैं, तथा मान अपमान यो हो, जो प्रशंसा प्राप्त करने में और अपमान प्राप्त करने में स्थिर रहते समबुद्धि, तो ऐसे व्यक्ति योग्य है कृष्ण भक्ति प्राप्त करने के लिए। यदि पूर्व जन्मों से किए हुए पाप का प्रभाव से विमुक्त भी है, परंतु अन्यत्र और भी विचार है कि पुण्य कर्म तो शुद्ध भक्ति का कारण नहीं है। जन्म कोटि सुकृताय न लभ्यते, कृष्ण भक्ति वो श्लोक क्या है, कृष्ण भक्ति भावना रसमति क्रियतां यदि कथोपि लभ्यते तत्र लोल्यम अपि मूल्यमेकलम जन्म कोटि सुकृताय लभ्यते न लभ्यते। जन्म कोटि की सुकृति से कृष्ण भक्ति प्राप्त नहीं होते नहीं होते। तो सुकृति का मतलब पुण्य कर्म, जैसे तीर्थ यात्रा करना, ब्राह्मण भोजन करना और शास्त्र अध्ययन करना, सदाचार पालन करना, वर्णाश्रम धर्म पालन करना, पूर्ण रूप से ब्रह्म धर्म ब्राह्मणों के धर्म पालन करने से कृष्ण भक्ति प्राप्ति नहीं होते हैं। सो जन्मों में यदि एक व्यक्ति पूरी तरह कुछ छूट नहीं हो, पूरी तरह ब्राह्मण का धर्म पालन करते तो योग्य होते हैं ब्रह्मा जी का पद प्राप्त करना, परंतु योग्य नहीं है शुद्धा भक्ति के लिए। शुद्धा भक्ति तो केवल लोलियम से मिलती है। लोलियम का मतलब लालची। और गीता में भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, कामस क्रोधस तथा लोभ त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः, काम क्रोधस तथा लोभस तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत्। काम क्रोध और लोभ नरक के तीन मुख्य द्वार है, इसलिए ये तीनों के त्याग करना पड़ेगा, नहीं है तो अधोगति होती है। और रूप गोस्वामी का विचार यही श्लोक में, कृष्ण भक्ति रस भावना माती ही, वो कैसी मिलती है, वो ऐसी माती कृष्ण भक्ति रस भावना माती ही लोलियम से। लोलियम का मतलब तीव्र लोभ। लोभ से नरक जाना है और लोभ से कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है। लोभ का विषय क्या होना चाहिए? लोभ सामान्यतः ये शब्द से हम क्या समझते, वो दृढ़ कामना, भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करना इंद्रिय सुख के लिए। और कृष्ण भक्ति में विशेष का रागानों का भक्ति में या रागात्मिका भक्ति में वो लोभ शब्द का अर्थ है कृष्ण और कृष्ण की सेवा और कृष्ण के भक्तों की सेवा प्राप्त करना। वो वृत्ति एक ही है लोभ, परंतु विषय पृथक है। तो कृष्ण भक्ति प्राप्त करने के लिए वो लोभ वो परम शुद्ध है और जन्म कोटि सुकृतायर न लभ्यते। भौतिक पुण्य कर्म करने से प्राप्त नहीं होते। क्यों? क्योंकि पुण्य कर्म में भौतिक कामना है जो भौतिक लोभ का कारण भी है। लोग क्यों पुण्य कर्म करते हैं? तो स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा से। तो ये सब पुण्य कर्म करना ये क्या है? वो पुण्यवान लोग करते हैं, लेकिन ये भौतिक संसार में पुण्य और पाप में दोनों का कारण है भौतिक सुख की इच्छा। लोग क्यों पाप करते हैं? भौतिक इंद्रिय सुख की इच्छा की पूर्ति करने के लिए। और क्यों पुण्य कर्म करते हैं? भौतिक इच्छाएं की पूर्ति करने के लिए। तो एक प्रकार के व्यक्ति पुण्य कर्म करने से इंद्रिय सुख भोगना चाहते हैं और दूसरे प्रकार के व्यक्ति शास्त्र विधि चढ़ के शास्त्र या शास्त्र विधि मुद्रित वार्तते काम कारतः न सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। लोग जो शास्त्र विधि पालन नहीं करते तो तुरंत इंद्रिय सुख मिलते, लेकिन उसके बाद नरक यातना प्राप्त करने पड़ते। तो लोग जो और थोड़ा बुद्धिमान होते सोचते कि यदि हम अभी अभी इंद्रिय सुख नहीं करेंगे, हम पुण्य काम करेंगे तो बाद में हम विशाल इंद्रिय सुख मिलेगा, और यदि हम अभी पाप काम करेंगे हम तुरंत इंद्रिय सुख मिलेगा, लेकिन उसके बाद हमें बहुत नरक यातना प्राप्त करना पड़ेगा। लेकिन दोनों की इच्छा एक ही है, इंद्रिय सुख भोग करना। तो इस प्रकार पुण्य कर्म करने से कृष्ण भक्ति कभी भी प्राप्त नहीं होती है। कृष्ण भक्ति प्राप्ति कैसे संभव है? लोलियम से, वो ही लोभ। लोभ कृष्ण सेवा के लिए। तो वो लोभ जो सबके हृदय में है, सबके हृदय में है, वो काम है। मायावादी शून्यवादी वो सब काम पूरी तरह बंद करना चाहते हैं, लेकिन वो संभव नहीं है क्योंकि वो सब जीव जीवित है और जीवन का मतलब कामना करना, वो जीवन से अपृथक है, इनसेपरेबल. कैसे बोलते हैं इनसेपरेबल? अभिन्न वो तो नहीं है, अलग नहीं कर सकते. एक शब्द अयुक्त्य, अयुक्त्य अविभक्त, वो तो नहीं है. दैट्स नॉन डिवाइडेबल, इनसेपरेबल, अपृथक नहीं है. एनीवे इनसेपरेबल है. दैट्स इजी हिंदी. जीव और काम दोनों इनसेपरेबल है. अच्छी हिंदी. अयुक्त्य एक शब्द हो सकते है. हमारे बीच कोई संस्कृत पंडित है? अपृथक, अपृथककारी, अविभाज्य. दैट्स ऑल्सो नॉट एग्जैक्टली द सेम. भाज्य मीन्स डिवाइडेबल. I like, but it's not correct. Huh? Ayoja. Abhiyoja. Lekin agar ekdam barabar shabd kahenge to koi samajh nahi lenge. Anyway, jeev aur kaam inseparable. जहा जीव वहा काम, जहा काम वहा जीव. जैसे आजकल वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना रहे हैं वो मशीन को, नकली बुद्धि यंत्रों, लेकिन वो मशीन में काम नहीं होते. इससे मेरा प्रश्न है, और सब जो बोलते हैं Darwin's evolutionary theory, survival of the fittest, struggle for survival, ये सब जो बोलते संघर्ष जीवित रहने के लिए, तो वो उस सब केमिकल्स जिसका संगठन होते हैं, और वो ऐसे बोलते नहीं कि पहले कुछ भी नहीं था, फिर एकदम शून्य में एक बहुत बड़ा विश्व था, विश्व था, और उसके बाद वो सब रसायन आया था, और कुछ सूप ऐसा था, और उससे जो तरल था तो घनीभूत हो गया, सॉलिड हो गया, और उससे कुछ अणु, वन सेल एनिमल आया था, और उससे धीरे धीरे कुछ मत्स्य आया था, फिर वो भूमि के ऊपर आया था, और फिर सांप था, और इस प्रकार धीरे धीरे चार्ल्स डार्विन भी आया था. इवोल्यूशनरी थ्योरी ऐसा होता है नहीं? तो मेरा प्रश्न है, ये सब केमिकल्स में कैसे काम आया था जीवित रहने के लिए? स्ट्रगल फॉर द फिट. क्यों स्ट्रगल करते? यदि हम कुछ यहाँ कुछ हाइड्रोक्लोरिक एसिड रखेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड और क्या है, सोडा जो अल्कलाइन है, और सब अलग अलग बीकर में रखेंगे, बीकर वो ऐसे बॉटल जो साइंस क्लास में रखते, और वो सब ऐसे मिक्स करेंगे तो कुछ बिस्फोट हो सकते है, लेकिन उससे किसी चीज नहीं आएगा जिसमें काम है. कि मैं अभी ऐसा हूँ और ऐसा रहना चाहता हूँ, वो काम से कहाँ आता है? वो जीव से आता है. इससे हम समझ सकते हैं कि जीवन आध्यात्मिक है, और वो पूरी तरह एकदम अलग श्रेणी है वो सब भौतिक पदार्थों से. तो क्या बात हो रही थी कि काम जीवन और काम क्या शब्द है? अभियोज्य है. अभियोज्य दैट साउंड्स बेटर. अभियोज्य है. अभी सब एक शब्द सीख लिया है. अभियोज्य है, इनसेपरेबल. जीवन और काम इनसेपरेबल है, परंतु वो काम यदि इंद्रिय सुख के लिए वो नरक का एक द्वार है, और काम और लोभ दोनों तो लगभग एक ही है. काम है एक विशेष विषय के लिए और लोभ है बहुत बहुत विषय के लिए है. तो काम जो भौतिक है उसका क्या परिभाषा है? अतेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बोले काम, कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम. तो लोलयम होने चाहिए कृष्ण की सेवा करने के. और वो कैसे वो परिणाम होते किसी का हृदय में? हम सब जो अनादि काल से जन्म जन्मांतर से हम भौतिक संसार में हम बद्ध है, बद्ध जीव है. वो बंधन कैसे होते भौतिक कामने से? वो कैसे वो परिणाम हो सकते कि इंद्रिय सुख की इच्छा छोड़ के हम चाहते हैं भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना? कैसे संभव है? क्या है, कौन सा केमिकल डालना है? कृष्ण भक्ति जन्म मूल होय साधु संग, साधु संग. भक्तिस्थु भगवत भक्त संजाय संगेन परिजायते. कृष्ण भक्त के संग से कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है. ये वो सब काम क्रोध लोभ जो हृदय में है वो शुद्ध हो जाते और काम होते कृष्ण की सेवा करने के लिए. लोभ काम क्रोध लाभ सब कृष्ण की सेवा में नियुक्त होते हैं. तो परीक्षित महाराज वृत्रासुर के बारे में पूछ रहे हैं कि वो सख्त कुख्यात असुर था और रावण जैसे सर्वलोक को कष्ट देने वाला था. रावण नाम का अर्थ है जो सब लोक के लोक को रोता थे. क्या बोलते हैं, मेक्स देम कर रोवाने वाला, रोलाने, रुलाने वाला है, रोदन करने वाला, रोदन करवाने वाला. थैंक यू. और वृत्रासुर की कुख्याति वैसे भी थी. और वैसे काम भी किया है, शुद्ध भक्त है, हृदय में दृढ़ इच्छा है भगवान की सेवा करना, परंतु उनका वास्तविक व्यवहार उससे एकदम विपरीत था. कैसे संभव है? तो आप सब जानते होंगे कि वो पहले वो असुर तो चित्रकेतु महाराज थे, महान भक्त, परंतु ऐसे एक घटना हुई जिससे पार्वती माता का श्राप से असुर का शरीर मिला और उसके साथ असुरिक वृत्ति भी मिले. तो वो शरीर जिसमें चित्रकेतु का आत्मा प्रवेश किया उसके साथ तो वैसी बुद्धि थी जो यथार्थ था, sab loko kasht dene ke liye. Parantu unke man mein unka udesh tha Krishna ki seva karna. To I say samanya nahi hai. Samanyata Krishna ke bhakton sushil hai. Sab sadgun sampanna hai. To Vritrasura ka vishay asadharan hai. Isse hame samajna chahiye ki kis prakar Krishna bhakti ahaituki apratihata hoti hai. Krishna bhakti ka hetu kya hai? Hetu nahi Srimatam Shuchinam Srimatam gehe yoga brashto bijayate. Yadi ek punyashali yogi jo pat se brasht hote hai, ek shuchi ya Srimatam griha mein janma lete hai, to waise janma lene se suvidha milte Krishna bhakti prapt karne ke liye. Parantu aisa nahi hai ki log jo neech kul mein bhi janma lete to bhakt nahi ho sakte. Iske bare mein bahut praman hai ye Srimad Bhagavat mein. Yatha ek shloka ho, bahut shlok hai. Gita mein bhi hai prasiddh ek shlok. Pahila mam hi partha vyapashritya ye pisu papa yonaya shabd striyo vaishastata shudras tepiyanti parangatim. Oh, Srimad Bhagavat me kirata Hunandra, Pulinda, Pulkasha, Abhira, Shumbha, Yavana, Kasadaya, Yenecha Papa, Yadapa Shraya Shraya, Shudhyanti Tasmai, Prabha Vishnave Namaha. So, ish shlok me, ki, ekdam, pap purna jati me, janma milke bhi, शुद्ध हो सकते कैसे शुद्ध हो सकते इस श्लोक का क्या उपदेश है? साधु संग तो भगवान विष्णु इतना प्रभावशाली है, इनका नाम है प्रभा विष्णु, क्योंकि इनके भक्तों के द्वारा, जो इनके चरणों में आश्रित है, इनके भक्तों के द्वारा लोग जो पूर्व कृत कर्म फल से सभ्यता के बाहर रखना है, चंडाल ऐसे लोग पूर्ण शुद्ध हो सकते. और इसके बारे में और भी श्लोक है कि अहो बाता स्वपचो थो गरियान, स्वपच गरियान है, कौन बोलती है? यही श्लोक स्वपच कुत्ते खाने वाले गरियन गौरवशाली है, देवहूति माता बोलती है. अहोबत स्वपच हो तो गरियन यज जीवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम तेपस तपस तेजुहु सस्नर आर्या ब्राह्मण उच्च नाम गृणंती ये थे. देवहूति माता कहते हैं कि जिनके जीव पर आप, मतलब स्वपुत्र कपिल देव को बोलते हैं, कपिल देव भगवान, तो जिनके जीव पर सदैव आपका नाम उच्चारित है, तो वो व्यक्ति गरियान है, गौरवशाली है। तो ऐसा व्यक्ति का कुछ भी अवसर नहीं है पुण्य कर्म करना। जो चंडाल स्वपच पंचम म्लेच्छ यावन है ऐसा व्यक्ति का कुछ भी अवसर नहीं है पुण्य कर्म करना। वो मंदिर में आना वर्जित है उनके लिए, महात्मा गांधी का अभी उनकी पहल है। और अभी तक वैसे लोग तो मंदिर में नहीं आते ज्यादा, क्योंकि उनकी माटी भिन्न है और अभ्यास भी भिन्न है, तो नीच जैसे देवता की पूजा करते हैं, भूत प्रेत की पूजा करते हैं वैसे। और सभ्य समाज में उनके आना मना है, तो कैसे पुण्य कर्म कर सकते, ब्राह्मण भोजन नहीं कर सकते। उनके लिए और ज्यादा पाप होते यदि एक ब्राह्मण उनको देखते। अदृश्य अस्पृश्य ये सब शब्द है। ऐसे लोग जो इतना बड़ा पापी है कि इतना नीच जन्म मिला कि उनका देखने से ही पाप होते, इसलिए वे सभ्यता से वो किसी ग्राम के बाहर रहते। और खासकर रात का समय चढ़ते जिससे कोई उनको नहीं देखेंगे, क्योंकि वे जानते कि अगर कोई हमको देखेंगे तो उनका पाप हो और हमारा और भी पाप हो। परंतु देवहूति कहते हैं कि जो स्वपच और नीच जातियों में सबसे नीचे स्वपच, जो कुत्ता का मांस पाक करके खाते सबसे नीचे, देवहूति रानी कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति भी यदि सदैव आपका दिव्य नाम उच्चारण करते हैं तो इससे ही समझ जाते हैं कि वे सभी प्रकार के वैदिक अनुष्ठित तपस्या किया है, सब तीर्थ स्थान में यात्रा किया है, सब शास्त्र का पाठ किया है। और विचार कीजिए कि वैदिक संस्कृति में शूद्रों के लिए भी वेद शब्दों श्रवण करना पाप होते, और शूद्र के नीच जो स्वपच है। देवहूति कहते हैं कि यदि आपका नाम उच्चारण करते हैं तो यही प्रमाण है कि वे सभी वैदिक शास्त्र का पाठ की चुके हैं। और इसके बारे में मध्वाचार्य और शास्त्र से एक श्लोक उद्धार किया, ऋग्वेद साम वेद यजुर्वेद वेद अथर्वणः अतीतस्तेन येनोक्तम हरेरित्यक्षरद्वयम्। जो ह रि दो अक्षर उच्चारण करते हैं तो ऐसा व्यक्ति तो सब ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद अथर्वेद पाठ किया चुका है, अर्थात सब वैदिक ज्ञान का उद्देश्य है भगवान हरि का नाम कीर्तन करना। तो हरि भक्ति का हेतु क्या है? हरि भक्ति अहैतुकी है, अहैतुकी अप्रतिहत। सामान्यतः हम ये दोनों शब्द इस प्रकार व्याख्या करते हैं कि भक्तों निस्वार्थ से भक्ति करते हैं, परंतु दूसरा दृष्टिकोण से भी ये अहैतुकी शब्द समझना है कि शुद्ध भक्ति की कोई हेतु नहीं है, कोई भौतिक हेतु नहीं है। जितने भी पुण्य काम हम करेंगे तो उससे हम योग्य नहीं होंगे, कृष्ण भक्ति करने के लिए। एक बात है कि पुण्य कर्म में कुछ हरि, वास्तव में हरि भक्ति नहीं है, हरि भक्ति की प्रतिबिंब होती है। जैसे वर्णाश्रम समाज में वो सब जो वर्णाश्रम सभ्यता में तो सब सहयोग करते हैं, सब स्वकाम करते हैं और सबका सहयोगिता से यज्ञ यज्ञ करने हैं, वो राजा महान यज्ञ ऐसे बनाते हैं। तो शूद्रों का श्रम से और वैश्यों का प्रदान घी अनाज वो सब और अलग अलग प्रकार के धन देने से, क्षत्रियों का धन देने से और आयोजन करने से और ब्राह्मणों का मंत्रोच्चारण करने से, सबका सहयोग से यज्ञ बनाने हैं। और यज्ञ में भगवान हरि का नाम उच्चारण करने हैं और स्वीकार करना है कि यज्ञेश्वर है श्री विष्णु। तो इस प्रकार पुण्य कर्म में वास्तविक भक्ति नहीं है, परंतु भगवान कृष्ण का नाम उच्चारण करना है और स्वीकृति होती है कि यज्ञेश्वर है श्री विष्णु। तो इस प्रकार पुण्य कर्म में कुछ भक्ति नहीं है और हरि संबंधित कार्य है जो भूमिका हो सकती है कृष्ण भक्ति के लिए। परंतु जब तक वैष्णव संघ, शुद्ध वैष्णवों का संघ नहीं मिलते, तब तक यही धारणा चलेगी कि हम हरि की सेवा करते हैं और इंद्र चंद्र वायु और सब देवता है, और इंद्र हरि भी एक देवता है, इंद्र के छोटे भाई नहीं, उपेंद्र, उपेंद्र मतलब उप इंद्र, इंद्र से छोटा है, वामन देव एक आदित्य है, आदित्य के पुत्र है। तो वैदिक समाज में भी ये सब कुधारणा हो सकते, परंतु शुद्ध भक्तों की संगति से हम श्रवण कर सकते। तो विष्णु कौन है, हम कौन है और हमारे दोनों में क्या संबंध है। और जो किसी प्रकार से भी कृष्ण भक्ति मिलते हैं तो बड़ा पापी होते हुए भी उसके पहले तो तुरंत उत्थक्षणात् उसी समय तो पूरा मुक्त होते हैं सभी पाप कर्म का फलों से। सावधामान परित्यजा मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। भगवान कृष्ण कहते हैं कि यदि एक व्यक्ति पूरी तरह मेरे चरणों में शरणागत होते हैं तो वो व्यक्ति उनके पूर्व कृत कर्म फलों से मैं मुक्त करवाता हूँ। और चैतन्य महाप्रभु ने कहा तो एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप खोए, कृष्ण का नाम उच्चारण करने से हम सभी प्रकार से के पाप से मुक्त हो सकते हैं। तो वैदिक अनुष्ठानों में भी कृष्ण का नाम और हरि का नाम उच्चारित होते हैं, परंतु हरि का नाम उच्चारण करके भी तो शुद्ध भक्तों का संग नहीं मिलना का दोष से वो भक्तिमय उच्चारण नहीं होते। इसके बारे में प्रेम विवाद में जगदानंद पंडित कहते हैं, असाधु संगे भाई कृष्ण नाम नहीं है। नाम आकर बाहरे बचे तबु नाम कबू नय। वास्तविक कृष्ण नाम उच्चारण होते हैं साधु संग में। वास्तविक कृष्ण नाम उच्चारण में क्या है, जैसे शिल प्रभुपाद हमको हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ हमको बताए, तो हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ क्या है, हे राधे, हे कृष्ण, मुझे आपकी दिव्या सेवा में नियुक्त कीजिए, सेवा प्रार्थना है। और जो हरि का नाम उच्चारण करते हैं भौतिक स्वार्थ के लिए और मोक्ष प्राप्त करने के लिए, ऐसे लोग सुकृतिवान हो सकते हैं, लेकिन शुद्ध भक्तिमान नहीं है। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनोर्जुन अर्थो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी चा भारतार सभा। चार प्रकार के सुकृतिवान लोग है, शुद्ध भक्त नहीं है, सुकृतिवान लोग है जो कृष्ण के पास आते हैं। ध्रुव महाराज एक विख्यात अर्थार्थी थे, उनकी माता श्री से श्रवण किया कि भगवान विष्णु सक्षम है तुमको संपत्ति प्रदान करना, तो वो हेतु से ध्रुव महाराज विष्णु आराधना करने लगे। वो हेतु की भक्ति थी और नारद मुनि की कृपा से ध्रुव महाराज की भक्ति अहेतु की हो गई। तो यदि भक्ति में हेतु अहेतु की भक्ति अहेतु की है, अर्थात उसमें कोई भौतिक हेतु नहीं है, आध्यात्मिक हेतु है, भगवान के भक्तों की कृपा। तो परीक्षित महाराज आश्चर्यान्वित हुए कि ऐसा बड़ा असुर है तो कैसे भक्त होते, तो कैसे भक्तों की कृपा मिल। वो पूर्व जन्म से असुरों भी कृष्ण भक्ति प्राप्त कर सकते है, ये विशेषकर चैतन्य महाप्रभु का प्रदान। दीनो हीनो जतो छिलो हरि नामे उधारे लो। लोग जो कृष्ण भक्ति से बहुत दूर है चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, यही जीवन में भी अभी अब ही कृष्ण भक्त हो सकते चैतन्य महाप्रभु और इनके भक्तों की कृपा से। चैतन्य महाप्रभु के भक्तों के बारे में एक वैष्णव कवि ऐसे कहते हैं कि ब्रह्मांड तारते शक्ति धरे जने जने। चैतन्य महाप्रभु के सभी भक्तों इतना शक्तिमान है, भक्ति शक्ति से नियुक्त है कि हर एक योग्य है पूरा ब्रह्मांड का उद्धार करने के लिए, सब पापी जन का उद्धार करने के लिए। चैतन्य महाप्रभु की लीला में एक भक्त है वासुदेव दत्त, जिनकी इच्छा थी सब पापी जीव, सब जो ब्रह्मांड में है सबका उद्धार करना, सबको गोलोक धाम भेजना। और इनकी प्रार्थना थी चैतन्य महाप्रभु के चरण में कि ये सब पापी जो ब्रह्मांड में है, तो सबको उधार कीजिए, सबको गोलोक धाम लेके जाए और उनका सब पाप कर्म का फल मैं भोग करूंगा, मैं चिरकाल में नरक में रहूंगा, जिससे और सब पापी जन का उद्धार होगा। और चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आपको नरक यंत्रणा भोग करने का जरूरत नहीं है, केवल आपकी शुद्ध इच्छा से जो सब पापी जीव का उद्धार हो गया है। तो भक्तों की इच्छा इतना प्रबल है कि केवल एक नहीं है, केवल अनेक नहीं है, तो सब पापी जन का उद्धार होते हैं। तो इस प्रसंग में श्रील प्रभुपाद उनका तात्पर्य में लिखे कि इसलिए श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, इसलिए चूंकि शुद्ध भक्तों पापी जीव का उद्धार कर सकते हैं, इसलिए श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, मैं अनुरोध करता हूं जिससे इस्कॉन के सभी सदस्यों शुद्ध भक्त होंगे, जिससे वे सब पापी जीव का उद्धार करेंगे। तो वास्तव में श्रील प्रभुपाद स्वयं पूरा बलवान है, भगवान श्री कृष्ण की कृपा शक्ति संचारित है श्रील प्रभुपाद, तो इनकी इच्छा से सब जीव का उद्धार हो सकते हैं, परंतु इनकी कृपा से हमको कुछ अवसर दिया जिससे हम इस चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन में, कृपा आंदोलन में जिससे हम भी अंशग्रहण कर सकते हैं, तो हमको कुछ सेवा दिया। तो आज भगवान जगन्नाथ की यात्रा, रथ यात्रा उपस्थित होगी, हम सब उसमें अंशग्रहण करेंगे और भगवान जगन्नाथ विशेषकर कृपामय है, यही रूप में भगवान जगन्नाथ बहुत कृपामय है। तो पहले उन्होंने नील माधव के रूप में पूजित हुए शबर जाति से, शबर का मतलब जंगल, जंगली लोग से पूजित हुए, और इंद्रद्युम्न महाराज की प्रबल इच्छा से। तो अभी नीलाचल जगन्नाथपुरी धाम में निवास करते हैं। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यम जगन्नाथाय ते नमः। इस प्रकार हम जगन्नाथ सुभद्र और बलदेव की स्तुति करते हैं। तो आज एक विशेष अवसर है, सब पुण्यशाली वडोदरा निवासियों को जगन्नाथ की कृपा देना, वे स्वयं देते हैं, और इनकी कृपा से हम इनके प्रतिनिधि सहायक के रूप में वडोदरा निवासियों को इनकी कृपा दे सकते हैं। इसलिए हमें सब कीर्तन में पूरा उत्साह से शामिल होना चाहिए और श्रील प्रभुपाद की दिव्य पुस्तक का वितरण करना चाहिए, प्रसाद वितरण, ये सब अनुष्ठान है जगन्नाथ की कृपा का प्रकाश। और आजकल हम विशेषकर भगवान जगन्नाथ के चरण में प्रार्थना करेंगे, जिससे हम निमित्त मात्र के रूप में इनकी कृपा वडोदरा निवासियों को दे सकेंगे। तो कैसे वृत्रासुर भक्त हो गया, और किस प्रकार भक्त नारायण पारायण Narayana para sarve nakutasena bhibhyati swarga pavarga narakesh vapituliarta darsha. Ye vachan Mahadev inki patni ko bataye yungi Parvati ascharyanvid hoge yungi wo chitraketu ko shrabdya. To tum asur ban jao. Or prasanta se do haton ko jorke chitraketu maharaj wo shrap grahan kiya upadravid nahi ho. Or unka swabhav deke parvati mata ascharya lag rahi hai. Mahadev ne kaha ki, kyunki ye chitraketu mahan bhakte, narayana para, isliye bhaibit ne hote, aur narak, swarg, aur moksh, tinon stiti saman jaise dekhte, kyunki sadaiva bhagavan krishna ka smaran mein, niyukt hote, nimagna hote. To Chitraketu Maharaj, Narayan para, Narayana parayana, hote, hone se, sakshamte, Parvati mata ka shrap, ka pratikarkan, parantu, vinamra bhav se grahan kiya. To aise bhakti, aise bhakt bahut durlabh hai. O Chitraketu Maharaj, aise vridrasura roop dharan kiya tha. Parantu unke hriday mein sadaiva bhagavan ka chintan tha. Ye ahaituki apratihata bhakti ka ek aur arth hai ki aise pratikul sthiti prapt karke bhi bhakton to bhagavan ko bhulte nahi. To Srimad Bhagavat mein hum mahan mahan bhakton ka charitra ki katha sunte hain aur unse hame prarthana karne chahiye jisse hum inke padraj ki seva ka avsa prapt kar sakenge. Hare Krishna. Chitraketu Maharaj ki jai. Vritrasura hum kya jai kahenge? Asur hai. Vritrasura ki jai. Bhara bhakte. Sirf roop aise hai. Lekin mahan bhakte, chitraketu, vritrasura, dono ek hi vyakti hai. Mahan bhakt, Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai, Jagannath Rath Yatra ki jai, Hare Krishna. धीरे धीरे कहो. बताया था और सही है. ऐसी घटना हो सकते है. आपका ये जन्ममय उम्र क्या है? 40? 43. तो इतने सारे साल में तो अभिज्ञता नहीं है कि संसार में कभी भी कुछ भी हो सकते और बहुत कुछ हो सकते है जिस वो उसका गठित होने के पहले हम कल्पना नहीं कर सकते कि ऐसे होगा. और विशेषकर जिससे इनके भक्तों का चरित्र का आदर्श प्रकट होगा, इसलिए भगवान ऐसे अलग अलग घटना बनाते हैं इनकी लीला शक्ति से। क्यों वो एक मृत सांप, वो परीक्षित महाराज, वो क्या नाम श्रृंगी के पिताजी, शमीक ऋषि, उनको लगाए? क्यों? शुद्ध भक्त तो वैसे ही नहीं करते, शुद्ध भक्त तो वैसे ही किया। और जो हुआ इसके पश्चात उससे परीक्षित महाराज का शुद्धता प्रकट हो गया। तो ये सब भगवान की लीला शक्ति से आयोजित है। क्यों जगन्नाथ ऐसा रूप में है, विचित्र है नहीं? ऐसे होते क्यों? सब भगवान की लीला शक्ति से आयोजित है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।